ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇತ್. ನಶ್ಚ ಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಶ್ಚಿಕೀ. ಓಮಜ್ಞಾತ ವಿರಾಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮೇಹಂ ನದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಗಣಲಿತಾಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೌ ದೀನಬಂಧೌ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪದುರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕಲ್ ಹಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾವ್ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ 12ವಾಂ ಶ್ಲೋಕ ಸೆ ಲೇಕೆ 17ವಾಂ ಶ್ಲೋಕ ತಕ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಜಹಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಮಾ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ, ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಮೇನೆ ಅಪರಾಧ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಆಪ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಹೋ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಪ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಆಪ್ಕೆ ಉದರ್ ಮೇ ಪೂರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೈ, ಗರ್ಭ ಜೈಸಾ ಉಸ್ ಗರ್ಭ ಕೆ ಅಂದರ್ ಮೇ ಏಕ ಶಿಶು ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಹೂ, ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಜಬ್ ಬಚ್ಚಾ ಮಾ ಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ಗರ್ಭ ಕೋ ಲಾತ್ ಮಾರ್ತಾ ಹೈ, ತೋ ಮಾ ಬುರಾ ನಹೀ ಮಾನ್ತಿ ಬಲ್ಕಿ ಮಾಫ್ ಕರ್ ದೇತಿ ಹೈ, ಬಲ್ಕಿ ಉಸೇ ಔರ್ ಪ್ರೇಮ ಭಿ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಜೆ ಮಾಫ್ ಕರ್ ದೀಜಿಯೆ. ತಬ್ ಕೋಯಿ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಬಚ್ಚಾ ವೋ ಹೈ ಜೊ ಮಾ ಕೆ ಗರ್ಭ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಆತಾ ಹೈ, ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನೆ ಪ್ರಮಾಣ ದಿಯಾ ಕಿ ಆಪ್ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಜಬ್ ಗರ್ಭೋದಾಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಕಾ ಜೊ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ, ಜಾ ಆಪ್ ನರ ಜೊ ಸಾಗರ್ ಹೈ ಗರ್ಭ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಸೋಯೆ ಹುವೆ ಹೈ, ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ನಾಭಿ ಕಮಲ್ ಸೆ ನಾಭಿ ಸೆ ಕಮಲ್ ಪ್ರಕಟ್ ಹುವಾ, ಉಸ್ಸೆ ಮೇ ಪ್ರಕಟ್ ಹುವಾ, ಯಾನಿ ಆಪ್ಕೆ ಉದರ್ ಸೆ ತು ಮೇ ಪ್ರಕಟ್ ಹುವಾ ಹೂ, ಜೈಸೆ ಬಚ್ಚಾ ಮಾ ಕಾ ಗರ್ಭ ಸೆ ಜನಮ ಲೇತಾ ಹೈ, ತೋ ಯಹಿ ಸಬೂತ್ ಹೈ ಕಿ ಮೇ ಆಪ್ ಮೇರಿ ಮಾ ಹೂ. ತಬ್ ಕೋಯಿ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಹಿ ಸಕ್ತೆ ತೋ ತುಮ್ ತೋ ನಾರಾಯಣ ಕಾ ಪುತ್ರ ಹುವಾ, ಮೇರಾ ಪುತ್ರ ಕಹಾಂ ಹುವಾ, ತೋ ನಾನು ಕಹಾ ಕಿ ನಾರಾಯಣಸ್ತ್ವಂ ಆಪ್ ಹೀ ನಾರಾಯಣ ಹೋ, ಉಸ್ಕಾ ಸಬೂತ್ ದಿಯಾ ಕಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಮತಲಬ್ ಜೊ ಜೀವೋಂ ಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ಔರ್ ಸಬ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ನಿವಾಸ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೈ, ಉನ್ಕೋ ಭೀ ನಾರಾಯಣ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಯೇ ಆಪ್ ಹೀ ಹೋ. ಔರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕಹಿ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಅಚ್ಚಾ ತೋ ಉಸ್ ನಾರಾಯಣ ಅಗರ್ ಮೇ ಹೀ ಹೂ, ತೋ ಮೇರಾ ಶರೀರ ತೋ ಸೀಮಿತ ಹೋ ಗಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ್, ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೆ ಅಂದರ್ ರಹ ಗಯಾ, ತೋ ಶರೀರ ಸೀಮಾ ಹೈ, तो नहीं, ऐसा आपका सीमा नहीं है आपका शरीर का आप, क्योंकि मैं जब नीचे जाके देखा तो आप दिखाई नहीं पड़े, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर दिव्य है, असीम है, दिखाई पड़ता है कि ब्रह्मांड के अंदर है। तो आखिरी में आर्ग्यूमेंट ये था कि अच्छा ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर मैं हूँ, लेकिन शुरुआत में तो कहा था कि ब्रह्मांड मेरे अंदर है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ब्रह्मांड के बाहर भी हो और ब्रह्मांड के अंदर भी हो, वो उसका सबूत यही है कि यशोदा के सामने आपने ये दिखाया कि इसी लीला में किस प्रकार इस ब्रह्मांड के अंदर आप थे या आप है, या उसमें आप यशोदा को जब मुंह खोल के दिखाए तो ब्रह्मांड आपके अंदर था और उसके अंदर भी दिखाया, बहुत बार इस बात को दिखाया कि किस प्रकार आप सबके बाहर भी हो और अंदर भी हो, ब्रह्मांड के बाहर भी हो और अंदर भी हो, इसलिए मैं मानता हूँ कि आप मेरे माँ हो, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी जो माया है बड़ा अद्भुत है, ये भौतिक जगत के साथ जिस प्रकार आप अनेकों प्रकार के लीलाएं करते हो, ये जो कारुण्य लीला है आपका, ये भौतिक जगत की सृष्टि है वही अद्भुत है, इसलिए आप माई हो, माया विना ये आपके जो माया है आपकी शक्तियों से हर कार्य हो रहा है। तो 17वां श्लोक तक ब्रह्मा जी ने ये बात किया। अभी 18 श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आपका भौतिक शक्तियों की माया का खेल तो मैंने वर्णन किया और मैंने जाना है, अभी इस लीला में, अभी माने अभी जो दिखाया ये लीला में आपने क्या किया, मुझे आपकी आध्यात्मिक जो माया है उसका भी खेल आपने दिखाया, स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसका भी जो खेल आपने दिखाया इस लीला में। अभी का जो पहले जो हुआ है, जो अभी तक वर्णन किया है, वो सब चीज़ें क्या है, भौतिक जगत किस प्रकार आप उसके अंदर भी हो, आप बाहर भी हो, आप मेरी माँ हो, सब कुछ बताया। लेकिन ये जो श्लोक में आपका ये ब्रह्मा जी अभी जो हुआ है लीला, यानी ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत, सबसे पहला भगवान अनेकों ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ आए और वृंदावन में लीलाएँ कर रहे हैं, और क्या हुआ, बछड़े और ग्वाल बाल दूर चले गए, अकेले भगवान ढूंढ रहे हैं। ये पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप भगवान को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या दर्शन किया कि वही एक कृष्ण अपने आप को विस्तार किए अनेकों ग्वाल बाल बछड़े के रूप में, ये दूसरा चीज़ दर्शन किया। और उसी समय कुछ समय के बाद भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वही कृष्ण से उत्पन्न हुए अनेकों विष्णु तत्व के स्वरूपों को उन्होंने दर्शन किया, और ये सारे विष्णु तत्व उनके स्वरूप जो है वो कैसे दर्शन किया, अनेकों जीवों के द्वारा पूजित थे वो सारे विष्णु तत्व, सारे जितने भी इवन ब्रह्मा भी ये विष्णु तत्वों को पूजा कर रहे थे। और चौथा उन्होंने क्या दर्शन किया, अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों को दर्शन किया, केवल विष्णु तत्व जो है अनेकों लोगों के साथ नहीं, एक अलग अलग लोक में सारे विष्णु हैं, एक एक विष्णु तत्व है और सारे जीव जो है उनको पूजा कर रहे हैं। और वापस ब्रह्मा जी ने वही स्वरूप को दर्शन किया जो पहले उन्होंने दर्शन किया था, वो कि कृष्ण का ग्वाल बाल स्वरूप जो हाथ में जो दही रेस लेके घूम रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी इस सब का वर्णन करते हैं श्लोक में, ये सब भगवान की कौन सी माया है, वो उनकी योग माया है। अभी तक उन्होंने महामाया का वर्णन किया पिछले 5 श्लोकों में, लेकिन अभी इस श्लोक में उनकी महामाया की अद्भुतता का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। भागवतम में ये जो लंबा लंबा श्लोक आता है, यानी 3 प्रकार का श्लोक है, एक छोटा वाला है जैसे सरल, जैसे 17वां श्लोक है यस्या कुक्षो इदम सर्वम, ऐसा छोटा है, और उससे थोड़ा सा लंबा छंद वाला है तो उसके 16वां श्लोक देख सकते हैं, अन्य श्लोक जैसे प्रार्थना उसका ट्यून अलग है। ये जो है भागवतम का स्पेशल श्लोक है, लंबा श्लोक है, ये सबसे लंबा है। जैसे जन्माद्यस्य तो ये श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वो श्लोक है, और यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मृतस्तुन्वंत दिव्य स्तव ये श्लोक है, और ये वाला इस प्रकार का ये जो लंबा लाइन वाला, ये इसको उच्चारण करने का जो ट्यून है उसको बृहति छंद कहा जाता है। इसलिए भगवद्गीता को उच्चारण किया जाता है कि अनुष्टुप छंद में, लेकिन भागवतम जो है, भागवतम का स्पेसिफिकली ये जो श्लोक है उसको बृहति छंद में वो उच्चारण किया जाता है। जैसे ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हमारा आदत नहीं है और मेरा भी उतना आदत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे उसको उच्चारण करने के लिए बृहति छंद में। अद्वैवतमृतेस्य किं मम नाते मायात्वमादर्शितम्, अद्वैवतद्रितेस्य किं मम नाते मायात्वमादर्शितम्, एकोऽप्सि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्सा समस्तापि, एकोऽपि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्सा समस्तापि, तावन्तोऽसि चतुर्भुजस्तदखिलैः साख्यं मायोपासितास्, भन्तोऽसि चतुर्भुजस्तदखिलैः साकं मायोपासितास्तावन्ते तावन्तेव जगत्तभूस्तदमितं ब्रह्मात् अद्ब्रह्माद्वयं शिष्यते, तावन्तेष जगत्तभूत्मकमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अद्वैव तद्रितेस्य किं मम नाते मायात्वमादर्शितम्, एकोऽसि प्रथमं ततो व्रजस् सुहृद्वत्सा समस्तापि, तावन्तोऽसि चतुर्भुजस्तदखिलैः साकं मायोपासितास्, तावन्त्येव जगदभूत्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अद्वैव तद्रितेस्य किं मम नाते मायात्वमादर्शितम्, अद्वैव तद्रितेस्य किं मम नाते मायात्वमादर्शितम्, एकोऽप्यसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्सा समस्तापि, तावन्तोऽसि चतुर्भुजस्तदखिलैः साख्यं मायोपासितास्, तावन्त्येव जगत्तु जगज्जभूतस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। तावन्त्येव जगज्जभूतस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अद्वैव तद्रितेस्य किं मम नाते मायात्वमादर्शितम्, एकोऽपि प्रथमं ततो व्रज चतुर्भुता समस्तापि
तावन्तो असि
तावन्तोऽसि चतुर्भुजस्तदखिलैः साकं मायोपासितास्।
तावन्तेव जगतस्भूतकृतं ब्रह्माद्वयं शिष्यते।
तावन्तेव जगञ्जभुस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अद्वैव ते कृते किं मम मते मायात्मा दर्शितम्। कोऽपि श्रीपतिं तावन्तोऽसि चतुर्भुजस्तकिलैः साकं मायोपासितास्। तावन्तेव जगञ्जभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते।
तो ये श्लोक का अर्थी परपोट समझ लीजिएगा। सबसे पहला ब्रह्मा जी कहते हैं अभी अद्य आज जो मैंने देखा है वो तो अति अद्भुत है। अभी जो वर्णन किया उससे अति अद्भुत है। क्या है वो कि सबसे पहला अद्यैव तद्रितेस्य किम्, अद्य मतलब टुडे आज, एव तद्रिते अस्य किम् मम नाते माया त्वम् आदर्शितम्। क्या भगवान आपने अभी जो दिखाया, आदर्शितम मतलब जो दिखाया, इससे स्पष्ट रूप से पता लगता है कि आप में और आपकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। आप ही हर जगह व्याप्त हो, सर्वम कलयिदं ब्रह्मन्। इतना ही नहीं, अभी जो भौतिक जगत में जिस प्रकार आपकी शक्तियों के द्वारा आप व्याप्त हो उसका ही वर्णन वही दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे, बल्कि आप आध्यात्मिक जगत में भी आप सर्वव्यापी हो। तो सबसे पहला उन्होंने कहा प्रथमम ततो व्रजः सुहृद् वत्सः समस्तापि। सेकेंड लाइन में देखिए प्रथमम, ये शब्द महत्वपूर्ण है। प्रथम मतलब पहला, पहला मैं आपको दर्शन किया। कैसे दर्शन किया? प्रथमम व्रजसुहृत, व्रजसुहृत मतलब सखाओं के साथ, सुहृत मतलब मित्र, आपकी सखाओं के साथ और वत्साह और जितने बच्चों के साथ वत्साह समस्ता आपका दर्शन हुआ। अभी तावन्तः असि चतुर्भुजस, तो क्या हुआ उसके बाद? मैंने देखा कि तावन्तः चतुर्भुजस, उतना ही जितना ही वाल बाल बच रहे थे और उतना ही आप चतुर्भुज रूप को प्रकाशित किया। तदकिले ही साकम मया उपास्थित, और जब चतुर्भुज रूपों को आपने दिखाया तो अनेकों लोग उनको उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। मैं भी उपासिता, मैं भी आपको पूजा कर रहा था। और एव जगन्ति आभूत तद अमितम, और साथ साथ में मैं भी देखा अनेकों वैकुंठ के जगत भी दिखाई पड़ा मुझे अमितम। इसलिए ब्रह्मा अद्वयम शिष्यते, अंततः क्या दिखाई पड़ा? ये सब जितने भी ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है, ये सब कुछ आपसे ही उत्पन्न हो रहा है। आप वैसे का वैसे ही थे और साथ साथ में ये सब आपसे उत्पन्न हो रहा था। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ये आध्यात्मिक लोकों का दर्शन किया, उसका वर्णन इस श्लोक में संक्षिप्त में कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत का वर्णन इस प्रकार है, उसका विस्तृत वर्णन वैसे तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। केवल भौतिक ब्रह्मांडों का नहीं, अलग लोकों का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत का भी वर्णन हुआ है। किस प्रकार? कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक में तीन विभाग है, वो है गोकुल, वृंदावन मथुरा और द्वारका, ये तीनों को कृष्ण लोक कहा जाता है। और कृष्ण लोक से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो ये लोक है भगवान रामचंद्र का, औदार्य धाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो उसके बाद वैकुंठ लोक का प्रारंभ होता है। अनेकों अनेकों वैकुंठ लोक है और प्रत्येक वैकुंठ लोक में एक विष्णु है, ऐश्वर्य रूप नारायण है, और चारों दिशाओं में संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव है। और इन एक एक वैकुंठ लोक में अनेकों अनेकों जीव है, दे आर अनलिमिटेड सोल्स, अनेकों भक्त उनको पूजा करते, उपासना करते दास्य रस में। तो जितने ब्रह्मांड दिखाई पड़ते उससे अधिक अधिक मात्रा में वैकुंठ लोक है, इनका कोई संख्या नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत का वर्णन शास्त्र में हुआ है त्रिपाद विभूति, ये भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहा गया है। एक पाद विभूति मतलब 1/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन, और त्रिपाद मतलब 3/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन। तीन चौथाई जो है आध्यात्मिक जगत है और एक चौथाई जो है भौतिक जगत है। अस्तित्व में ये केवल वर्णन करने मात्र के लिए कि अगर ये भौतिक जगत ही असीम है, उसका हम लोग माप नहीं सकते, ये तो आध्यात्मिक जगत जो इससे तीन गुणा है, ये बताने के लिए। वैसे तो भगवान अनंत है, अनंत होने के नाते उनको कोई माप नहीं सकते, आध्यात्मिक जगत कोई माप नहीं सकता, उसका 1/4 to 2/4 नहीं रहता। जिस प्रकार इन्फिनिटी है, अनंत का आधा क्या है, अनंत ही होता है। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2, 10, 1000 कुछ भी करो वो तो इन्फिनिटी रहेगा। तो आप कितना भी उसको खंडन करने के लिए जाइए या अनंत को विभाजन करने के लिए जाइए, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये खाली बताने के लिए कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत का जो वैभव है वो भौतिक जगत से और परे है और अद्भुत है। इसलिए ब्रह्मा जी अपना अद्भुत रस को अनुभव करते हुए ये कहते हैं कि अभी जो मैंने वर्णन किया है भौतिक जगत का, उसके साथ कैसे संबंध है, आप उसके अंदर कैसे हो और भौतिक जगत भी आपके अंदर कैसे है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये भगवान का ये तो विभूति है, वैभव कुछ भी नहीं है, भगवान का वैभव का एक अंश है। जैसे भगवता में भगवान कहते हैं एकांक्षेण स्थितो जगत विष्टभ्याविदम कृष्णम एकांक्षेण स्थितो जगत, ये तो भगवान का एक अंश है। तो आध्यात्मिक जगत तो कितना महान होगा, इट इज ट्रिमेंडस, इट इज इनकन्सीवेबल। तो ये श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी आध्यात्मिक जगत को थोड़ा सा परिचय दिए। और ब्रह्मा जी ने कहा ये भौतिक चीज़ के क्या कहा, अभी जो मैंने देखा ये अति अद्भुत है, इससे पता लगता है कि आप ही सब कुछ हो, सर्वम कलविदम ब्रह्मन, ये बात को आपने सिद्ध किया। सर्वम मतलब यही नहीं कि भौतिक जगत ही नहीं, आध्यात्मिक जगत भी आपके ऊपर आधारित है, आपका विस्तार है, इस सत्य को उन्होंने स्थापित किया। चलिए आगे श्लोक में चलते हैं। अजानतस्ताम तवत्पद त्वत्पदवीम अनात्म्यान अजानताम त्वत्पदवीम अनात्म्यन अजानताम त्वत्पदवीम अनात्मन्य आत्मात्मना भाति वितत्य मायाम आत्मात्मना भाति वितत्य मायाम आत्मात्मना भासि वितत्य मायाम श्रुष्ट्वाविदं जगतो विधाना श्रुष्ट्वाविवाहं जगतो विधाना इव त्वमेशो अन्त इव त्रिनेत्रा इव त्वमेशोन्त इव त्रिनेत्रः अजानतां त्वत्पदवीमनात्म्यन् अ
अजात्मतां त्वत्पदवीमनात्म्यन्य आत्मात्मना भाति वितत्य मायान् आत्मात्मना भासि वितत्य मायाम् सृष्ट्वा विवाहं जगतो विधाना इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रा इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग आपकी दिव्य स्थिति को नहीं जानते वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या मानते हैं आपके बारे में, उसका वर्णन किया। तो ये मायावादी लोगों के बारे में है। तो अजानताम, अजानताम मतलब आपके बारे में जो जानते नहीं हैं। त्वाम त्वत् पदवीम, आपकी जो पदवी, आपकी जो स्थिति है, जो अजानता, अजानता मतलब जो जानता नहीं है। अनात्मनि, आत्म आत्मना भासी वितत्या, वो लोग क्या कहते हैं, आप जो हो अनात्मनि मतलब ये भौतिक जगत के रूप में आप अपने आप को विस्तार कर लेते हो। तो इसका मतलब ये है, वो लोग सोचते हैं कि ये भौतिक जगत ही आप हो। ये सही बात है, भौतिक जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ये भौतिक जगत बन गए। ये बड़ा गहरा सिद्धांतिक बात है, ये मायावादियों का इस प्रकार कहना है। वो लोग कहते हैं कि भगवान ही जगत बन गए, इसलिए जगत का पूजा करो, भगवान का पूजा हो जाता है। तो सृष्टि के विषय में दो प्रकार का मायावादियों का मंतव्य है। एक है परिणामवाद, दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद और विवर्तवाद, सबसे पहला है विवर्तवाद, परिणामवाद का चर्चा करेंगे। उनके अनुसार परिणाम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भगवान नहीं है, वो भगवान ही जगत बन गए हैं। और इस जगत में कोई भी चीज़ देखो वो भगवान का परिणाम है। तो इससे कुछ भी चीज़ का पूजा करो, भगवान का पूजा हो जाता है। तो ये इसको परिणामवाद कहा जाता है। दूसरा है विवर्तवाद, वन इज थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिणामवाद है। दूसरा है विवर्तवाद, उसको थियोरी ऑफ इल्यूजन कहा जाता है। वास्तव में वो उनका कहना ये है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और इस जगत में कोई भी चीज़ दिखाई पड़ता सब मिथ्या है। इतना हद तक कि देवता लोग मिथ्या है और जितने भी अवतार है वो भी मिथ्या है। सत्य अगर कोई चीज़ है तो ब्रह्म मात्र है। द ओनली ट्रूथ इज ब्रह्मन, एवरीथिंग इज मिथ्या, फॉल्स, इट इसको विवर्तवाद कहा जाता है। तो ब्रह्म के ऊपर जब कुछ माया का प्रभाव पड़ा तब ये
ये जगत के रूप में आ गया, वो मिथ्या स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मायावादियों का जगत के बारे में दो प्रकार का मंतव्य है, ये दोनों गलत है, बोथ आर फॉल्स। तो इधर ये जो परिणामवाद है उसका वर्णन हो रहा है कि अजानतः जो लोग जानते नहीं हैं आपके दिव्य स्थिति को, वो लोग क्या कहते हैं, ये भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही ये भौतिक तत्वों के रूप में परिणित हो गए, ये कभी नहीं होता है, इट डजंट हैपन लाइक दैट। वैष्णव सिद्धांत क्या है, परिणाम होता है लेकिन किसका होता है कि भगवान का नहीं होता है, कृष्ण का नहीं होता है, कृष्ण की शक्तियों का होता है। इसलिए वैष्णव सिद्धांत क्या है इस जगत के विषय में, शक्ति परिणामवाद। भगवान वैसे के वैसे रह जाएंगे, शक्ति उनके इनसे शक्तियाँ उत्पन्न होती है और उनका विस्तार होता है और उनका परिवर्तन होता है वो भौतिक जगत के रूप में। यानी पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूर्ण है, भौतिक जगत भी पूर्ण है, वो सत्य है। पूर्णमद आध्यात्मिक जगत भी सत्य है, वो भी पूर्ण है। और ये भौतिक जगत कहाँ से आया है, आध्यात्मिक जगत से आया है या आध्यात्मिक भगवान से आया है। तो ये आने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान में कोई कमी नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 1-1 is 1, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, 1-1 is 1। लेकिन आध्यात्म ये जो भौतिकवादी क्या है, भगवान को भी भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अभी वन जो भगवान थे एक, उससे भौतिक जगत निकल गया तो वो जीरो हो गया, उधर कुछ नहीं है, तो भगवान कहाँ है, भौतिक जगत के रूप में है, इसी को बस विश्व रूप के मान के इसी को पूजा करो, बस यही सब कुछ है, इसी से मुक्ति मिल जाएगा। तो इधर ब्रह्मा जी उसी बात को कहते हैं कि टू द इग्नोरेंट पर्सन यू योर एक्चुअल ट्रांसेंडेंटल पोजिशन, टू द इग्नोरेंट ऑफ योर एक्चुअल ट्रांसेंडेंटल पोजिशन यू अपियर एज पार्ट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड मैनिफेस्टिंग यूर सेल्फ बाई एक्सपैंडिंग योर इनकन्सिक्वेंस। तो आपको भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इतना हद तक कि उनका कहना ये है कि ब्रह्मा यानी मुझे, विष्णु और महेश, ये तीन चीज़ों को जो मानते हैं त्रिनिटी लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ब्रह्म तीन भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनको भी वो मानते हैं कि यही कृष्ण ब्रह्मा बन गया, यही कृष्ण विष्णु बन गया, यही कृष्ण जो है वो शिवजी बन गया, अभी कृष्ण रहा नहीं। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार अवतार भी माया, इसलिए उनको मायावाद कहा जाता है। मायावाद को मायावाद क्यों कहा गया है भाई, क्योंकि वो सोचते हैं कि अवतार और कृष्ण का जो स्वरूप है वो माया से उत्पन्न हुआ है। दे कंसिडर दैट द फॉर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ माया, ईश्वर इज अ प्रोडक्ट ऑफ माया, दैट इज वाई मायावाद इज कॉल्ड मायावाद। इसलिए उसका विरुद्ध में मध्वाचार्य ने तत्ववाद का खड़ा किया, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, उसको तत्ववाद कहा जाता है। तो मायावाद का ऑपोजिट वर्ड है तत्ववादी, मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है वो तत्ववादी है, ये मायावादी है। तो तत्व मतलब सत्य है, तो मध्वाचार्य कहते हैं भगवान का स्वरूप सत्य है और शंकराचार्य कहते हैं माया, भगवान का स्वरूप माया है, इसलिए उनको मायावाद कहा जाता है, इसको तत्ववाद कहा जाता है। तो ये थोड़ा जानकारी मात्र के लिए है। तो ब्रह्मा जी उस अज्ञानी मायावादी लोगों के विषय में कहा कि वो वो सोचते हैं कि मैं जो सृष्टि के लिए हूँ और शिव जी जो प्रलय के लिए है और ये विष्णु जो पालन के लिए है, वो सब माया के स्वरूप है और आप ही इस रूप में परिणित हो गए हो, यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। लेकिन ये बात नहीं जानते आप, जैसा का वैसे वृंदावन में अपनी लीलाओं को संपन्न करते रहेंगे और अनेकों ब्रह्मांडों को उत्पत्ति हो रहा है, पालन हो रहा है, लय हो रहा है, कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, यू गॉट नथिंग टू डू विद दिस थिंग्स, क्योंकि आपकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ संपन्न हो रहा है, ये बात नहीं मालूम, आपकी शक्तियों को स्वीकार नहीं करते मायावादी लोग, यही तकलीफ है, आपकी गुणों को स्वीकार नहीं करते, यही तकलीफ है। मायावादी लोग शक्ति को स्वीकार नहीं करते, दे डोंट एक्सेप्ट द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ये है। तो बाद में नेक्स्ट श्लोक सुरेश विश्वीशतते वन्निश्वपि सुरेश विश्वीश तथैव नृष्वपि सुरेश विश्वीश तथैव नृष्यपि तिर्यक्षु यादस्वपि ते तेजनस्य तिर्यक्षु यादस्वपि तेजनस्य तिर्यक्षु यादस्वपि तेजनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च सुरेश विश्वीश तथैव नृष्यपि सुरेश विश्वीश तथैव नृष्यपि तिर्यक्षु यादस्वपि तेजनस्य तिर्यक्षु यादस्वपि तेजनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च
जन्मासतामदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय
तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप जब अवतार लेते हो अनेकों योनियों में अवतार लेते हो। कैसे कैसे योनियों में अवतार लेते हो? सुरेशु, देवताओं में। देवताओं के बीच में भगवान ने वामन देव का अवतार लिया। वामन देव जो है देवताओं के बीच में अवतार लिया। कैसे? वामन देव किसका पुत्र है? हाँ, वामनदेव कश्यप अदिति, अदिति से आदित्य प्रकट हुए। सारे देवता लोग अदिति से प्रकट हुए, सारे दैत्य दिति से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम आदित्य पड़ा। और दैत्य को दैत्य कहा जाता है, क्यों? दिति से उनका प्रकट हुआ, अदिति और दिति। कश्यप से दोनों प्रजा, एक पूरा जितने भी देवता लोग हैं वो अदिति से प्रकट हुए, और जितने भी असुर लोग है, दैत्य है, दानव है, वो सब कहाँ से? किससे? दिति से प्रकट हुए। तो भगवान वामन देव कौन है? वो अदिति के पुत्र है। तो इसलिए सुरेशु, सुरेशु मतलब देवताओं के बीच में प्रकट होते हैं। एग्जाम्पल है वामन देव। ऋषिशु, ऋषि के रूप में भगवान प्रकट हुए। परशुराम, परशुराम बड़े ऋषि है, उसके उनके रूप में प्रकट हुए। और तथा एव ऋषिषु मतलब मनुष्य, मनुष्य योनि में भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान कृष्ण स्वयं आप और दूसरा रामचंद्र, ये मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। और त्रियक्षु, त्रियक्षु जो है वो दूसरे लाइन में जो है वो पहला शब्द त्रियक्षु, वो जानवर है। भगवान जानवरों के बीच में कैसे प्रकट हुए? वराह, वराह के रूप में प्रकट हुए। और यादहसु, ये एक्वेटिक्स यानी जल में कैसे मत्स्य अवतार के रूप प्रकट हुए। तो इस प्रकार आप अनेकों योनियों में प्रकट होते हो, लेकिन ये प्रकट होने के बाद भी ते अजनस्या, आप कौन हो? दूसरा इनका आखिरी शब्द जो है अजनस्या, अजनस्या मतलब आप कौन हो? अजन्मा हो, आपका कोई जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? जन्म लेते हो। जैसे भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अपने आप को प्रकट करते हैं अलग अलग योनियों में। तो इस बात को वो लोग नहीं जानते, आप अजन्मा हो लेकिन फिर भी जन्म लेते हो, अजन्मा का जन्म है ये अवतार, मतलब अजन्मा का जन्म है। तो जन्म क्यों लेते हो आप? असताम दुर्मद निर्ग्रहाय, असताम मतलब जो असत व्यक्ति है, तीसरे इनका जो जन्म लेते हो, किसके लिए जन्म लेते हो? अवतार लेते हो आप, अवतार लेते हो असताम, असताम मतलब जो संत नहीं है, दुष्ट है, और दुर्मदा जो जिसका बुद्धि ठीक नहीं है, अहंकार से बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, दुर्मदा अहंकार जिसके अंदर है, और निग्रहाया उनको नाश करने के लिए, जैसे परित्राण है साधुना विनाशाय दुष्कृताम, उस बात को कहा गया निर्ग्रहाय। प्रभो विधाता सदनुग्रहाय, प्रभो क्या आप क्या करते हैं? प्रभु आप सदनुग्रहाय, सत लोगों के लिए अनुग्रह करने के लिए आते हो, तो ये आपका कार्य है। क्यों प्रकट होते हो इतने इतने योनियों में? विनाशाय दुष्कृताम और परित्राणाय साधुनाम, और इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? परित्राणाय साधुनाम ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी उसी श्लोक को फिर से ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये बताने के लिए कि कृष्ण का कोई जन्म नहीं है, अजन्मा है, लेकिन फिर भी वो प्रकट होते हैं। किसके लिए प्रकट होते हैं? ये जन्म असताम दुर्मत निर्ग्रहाय, तीसरा लाइन में जो है, और चौथे लाइन में क्या है? सदअनुग्रहाय, संत लोगों को या सद भक्त लोगों को, भक्तों को अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। हे प्रभु आप विधाता हो, आप वास्तविक ईश्वर हो, इस प्रकार तीन शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी ने कृष्ण को संबोधित किया है। प्रभु विधाता ईश्वर, आप ईश्वर हो, आप वास्तविक प्रभु हो, आप ही विधाता हो, तो ये तीन शब्दों के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी संबोधित करके उन्होंने बताया कि आप इन इन योनियों में अवतार लेते हो, इसका कारण भी उन्होंने इस श्लोक में बताया कि ये बात स्पष्ट करने के लिए कि भगवान का जन्म जो है ये दिव्य है, ये भौतिक नहीं है, ये इस प्रकार भगवान का गुणगान किया। तब कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ऐसा जन्म लेते हैं लेकिन कोई किसी को मालूम है? तो ये आप किस प्रकार कैसे कहाँ प्रकट होते हो ये कोई बोल नहीं सकता है, ये बड़ा अद्भुत तरीके से करते हो, ऐसा उन्होंने अगले श्लोक में कहा अवतारों के विषय में, अवतार तत्व का वर्णन करते हुए। को वेत्ति भूमन भगवन् परात्मन, को वेत्ति भूमन भगवन् परात्मन, योगेश्वरोतिर्भगवत त्रिलोक्याम्, योगेश्वरोतिर्भवत त्रिलोक्याम्, योगेश्वरोतिर्भवत त्रिलोक्याम्, क्वावा कतम वा कति वा कदेति, क्वावा कतम वा कति वा कदेति, ವಿಸ್ತಾರ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಸಿ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ವಿಸ್ತಾರಯನ್ ಕ್ರೀಡಸಿ ಯೋಗ ಮಾಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯನ್ ಕ್ರೀಡಸಿ ಯೋಗ ಮಾಯಾಂ ಕೋವೇತಿ ಭೂಮನ್ ಭಗವನ್ ಪರಾತ್ಮನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರೋತೇರ್ಭವತ ಸ್ತ್ರೀಲೋಕ್ಯಾ ವಾವಾ ಕಥಂ ವಾ ಕತಿ ವಾ ಕದೇತಿ ವಿಸ್ತಾರಯನ್ ವಿಸ್ತಾರಯನ್ ಕ್ರೀಡಸಿ ಯೋಗ ಮಾಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯನ್ ಕ್ರೀಡಸಿ ಯೋಗ ಮಾಯಾಂ
ಕೋವೇತಿ ಭೂಮನ್ ಭಗವನ್ ಪರಾತ್ಮನ್
ಕೋವೇತಿ ಭೂಮನ್ ಭಗವನ್ ಪರಾತ್ಮನ್ ವಿಸ್ತಾರಯನ್ ಕ್ರೀಡಸಿ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಹೇತಿ ಭೂಮನ್ ಭಗವನ್ ಪರಾತ್ಮನ್ इस श्लोक में ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप में कहते हैं जो लोग ये आपकी दिव्यता को नहीं समझते उनको ये सब बातें समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार को वेत्ति कोई जान नहीं सकता कौन जान सकता है कोई नहीं जान सकता है भूमन भगवान परात्मन आपको भगवान को महान भूमन मतलब महान भगवान परमात्मा ಯೋಗೇಶ್ವರ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನೆ ಸಂಬೋಧಿತ ಕ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ಕೆ ಕಾ ಕಿ ಉತಿ ಭವತಃ ಆಪ್ಕಾ ಜೊ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಹೇ ವೋ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀ ಚಾರ್ ಚೀಜೋ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಜಾನ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ ಏಕ ಕ್ವಾ ವಾ ಕ್ವಾ ವಾ ಮತಲಬ್ ಕಹಾಂ ಕಹಾಂ ಮತಲಬ್ ಕ್ವಾ ಮತಲಬ್ ಕಹಾಂ ಆಪ್ ಕಹಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಹೋತೆ ಹೋ दूसरा खत्म कैसे प्रकट होते हो कति कितनी प्रकार प्रकट होते हो कदा कब एक है वेयर दूसरा है हाउ तीसरा है हाउ मेनी और चौथा है व्हेन यानी सार रूप में बता जाए कि कहाँ कैसे कितना कब सारा प्रश्न हो गया अवतार के विषय भी चार प्रश्न हैं एक है भगवान कहाँ प्रकट होते हैं कैसे प्रकट होते हैं कितने तरीके से प्रकट होते हैं और अंततः कब प्रकट होते हैं ये चार चीज़ों के बारे में तो कोई जान नहीं सकता इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कैसे होते नो वन कैन अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ हाउ योर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्ट्स आगे योग मायान ये योग माया किस प्रकार क्रीडसी लास्ट लाइन में जो है विस्तारयन क्रीडसी योग मायान विस्तारयन क्रीडसी को योग मायान विस्तार ये योग माया का जो क्रीड़ा है ये कोई व्यक्ति जान नहीं सकता तो श्री विश्वनाथ ठाकुर इसके विषय में कहते हैं कि ओनली बट नॉट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इफ योर ट्रांसेंडेंटल बॉडी वर नॉट बियॉन्ड द मोड्स मेटल नेचर अगर आपका ये शरीर दिव्य नहीं होता नो वन कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड ट्रांसेंडेंस दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर आपका शरीर दिव्य नहीं है और इस प्रकार आप प्रकट हो अवतार के रूप प्रकट होकर अपनी मूर्तिमान स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते हो कोई भी व्यक्ति दिव्यता क्या है नहीं जान सकता दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी इस श्लोक को उच्चारण करने के पीछे के भाव श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि आपका इस मूर्तिमान स्वरूप में अनेकों रूपों में इस अवतार ग्रहण करने का एकमात्र उद्देश्य है लोगों को ये दिखाना कि मेरा एक दिव्य स्वरूप है, दिव्य शरीर है। ऐसा नहीं कि अगर किसी का रूप है इसका मतलब ये भौतिक ही होना चाहिए, इस प्रकार की जो धारणा है किसके अंदर है, अज्ञानी लोगों का धारणा है, मायावादियों का धारणा है। मायावादी लोगों के अनुसार जहाँ रूप दिखाई पड़ा आपको, जहाँ गुण दिखाई पड़ा, ये समझना चाहिए कि वो भौतिक है। वेर एवर यू सी फॉर्म एंड क्वालिटीज इट मीन्स इट इज़ मटीरियल। उनको कोई आध्यात्मिक रूप और गुणों का कोई ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कि जिसका गुण है, जिसका रूप है, वो भौतिक है। तो इसलिए जब आप अवतार के रूप में प्रकट होते हो तो आपका रूप और आपका गुण को देख के वो सोचते हैं कि आप भौतिक हो। तो आप अवतार के रूप में प्रकट होने का मुख्य कारण यही है ये बताना कि दिव्य स्तर में भी, आध्यात्मिक स्तर में भी गुण है, रूप है। इसलिए मायावादियों का और एक नाम है निर्विशेषवादी। ये निर्विशेषवादी क्यों कहा जाता है मायावादियों को, वाई दे आर कॉल्ड निर्विशेषवादी, बिकॉज दे कंसिडर, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मतलब उनके अंदर विशेषता क्वालिटीज नहीं होना चाहिए, गुण नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति भगवान है, वही व्यक्ति ब्रह्म है, वही चीज़ ब्रह्म है, ऐसा मानना है। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद प्रणाम मंत्र पढ़े, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। उनके अनुसार भगवान सुंदर है तो भगवान नहीं हो, सुंदरता मतलब भौतिक है तो भगवान मतलब सुंदर नहीं होना चाहिए, उनका रंग नहीं होना चाहिए, कोई रूप नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं होना चाहिए, पैर नहीं होना चाहिए, वही भगवान है। तो इस प्रकार उनकी धारणा है और इस धारणा को खंडन करने के लिए आप अवतार लेते हो। ये इस श्लोक के पीछे ब्रह्मा जी का भाव है, पर्पस बिहाइंड दिस वर्स इज दिस थिंग, कि ये दिखाने के लिए हे भगवान आप दिखाते हो मैं दिव्य हूँ और मेरा रूप है। ऐसा नहीं कि दिव्य है तो रूप नहीं होगा, दिव्य है तो गुण नहीं होगा, नहीं, मेरा दिव्य गुण है। ये बात श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने भाष्य में स्पष्ट रूप में कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। तो ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा जो है, मायावादियों के अनुसार ये ब्रह्म भगवान ही सत्य है, ही ज्ञान है और यही अनंत है। लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य ने स्थापित किया ये जितने भी शास्त्रों में गुणों का वर्णन हुआ है, सत्य है, ज्ञान है, ये सब ये भगवान के गुण हैं। जब शास्त्रों में गुणों का वर्णन हुआ है मायावादी लोग सोचते हैं गुण ही भगवान है, लेकिन रामानुजाचार्य ने स्थापित किया कि गुण ही भगवान नहीं है, गुण जो है भगवान का है। जैसे किसी गुणों का वर्णन हो रहा है हम पूछते हैं किसका है, ये गुण भगवान नहीं होता है, गुण ब्रह्म नहीं है, ये गुण ब्रह्म का है। तो ये थोड़ा सा गहरा सिद्धांत है जो मायावादियों के या मायावाद को थोड़ा जानता है उसको तर्क करना है, उसको खंडन करना है, हमको इन चीज़ों को थोड़ा जानना होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमको इधर उधर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और राम सार्वभट्टाचार्य के साथ संवाद पढ़िएगा और चैतन्य महाप्रभु और प्रकाश आनंद सरस्वती के साथ संवाद पढ़ लीजिएगा। ये दो संवाद पढ़ेंगे, मायावाद का कितना भी पढ़ा पंडित भी क्यों ना, शंकराचार्य भी आए इधर सामने आपके सामने उसको खंडन कर सकते हो, साक्षात शंकराचार्य तो भी, आदि शंकरा भी आए, डरने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको ये दो कन्वर्जेशन पढ़ना होगा, चैतन्य महाप्रभु और सर्वमठाचार्य, दूसरा चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती। खाली उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए बस, अगर समझ में भी नहीं आता रट लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इसको रट के भी जवाब देंगे तो समझ जाता है इसको मालूम है। तो अगर कोई रट के भी उसको बस बोल दे तो आदि शंकराचार्य भी दूर भाग जाएंगे, इतना शक्तिशाली कन्वर्जेशन, बहुत सिस्टमैटिकली खंडन किया है। तो शुरुआत में जब प्रभुपाद की किताब पढ़ता था और अन्य किताब पढ़ता था मुझे मालूम नहीं पड़ता था मायावाद क्या है, लेकिन मायावाद क्या है कब मालूम पड़ा, जब ये चैतन्य चरितामृत पढ़ा तो अस्तित्व चैतन्य चरितामृत से मालूम करना चाहिए कृष्ण प्रेम क्या है, लेकिन उसमें मायावाद क्या वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो आखिर एक श्लोक कर लेते हैं, लास्ट। ये सार है, अभी तक ये जो सेक्शन है उसका सार है। तस्मात, इसलिए ये श्लोक शुरू होते हैं तस्मात, इसीलिए इसे ब्रह्मा जी सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो बताया, तस्मादिदं जगदशेषम असत्स्वरूपम्, तस्मादिदं जगदशेषम असत्स्वरूपम्, स्वप्नावभम् असद्दिशान् पुरुदुःखदुःखम्। स्वप्नाभवमस्तदिशम् इषणम् पुरुदुःखदुःखम्। स्वप्नावभम् असत् दिषणं पुरुदुःखदुःखम्। त्वयैव नित्यसुखबोधतनावनन्ते, त्वयैव नित्यसुखबोधतनावनन्ते, मायातौ यद्यपि यत् सदिवावभाति। मायातौ यद्यपि यत् सदिवावभाति, तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपम्, स्वप्नाभवत्तस्तिदिशम् इषणम् पुरुदुःखदुःखम्। त्वयैव नित्यसुखबोध त्ववावनन्ते, त्वयैव नित्यसुखबोध तनवाननन्ते, मायातौ यद्यपि यत् सदिवावभाति। मायातौ यद्यपि यत् सदिवावभाति,
तस्मादिदं जगदशेषसतरूपम्,
त्वय्येव नित्यसुखबोधत्वनावनन्ते,
मायातद्यपि यत् सदिवावभाति,
ब्रह्मा जी ने सार रूप में ये श्लोक में कहा, हे भगवान, अभी तक मैंने जो भी कहा, दो चीज़ें इसके अंदर, एक इस जगत के बारे में, दूसरा ज्ञान है आपका स्वरूप के बारे में। ये जगत जो है उसके बारे में मैंने कहा कि अभी तक ये एक स्वप्न जैसा है। तस्माद् इदं जगत् अशेषतत् स्वरूपम् स्वप्नावभम्, ये कैसा है, स्वप्नावम, स्वप्न जैसा है। दूसरा है असत् स्वरूपम्, ये जो जगत है असत है, असत मतलब टेम्पररी है, सत मतलब परमानेंट, एटर्नल, शाश्वत, या असत है। तो इस भौतिक जगत का दो लक्षण भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ये स्वप्न जैसा है और दूसरा क्या है, असत है, ये टेम्पररी है। और दूसरा ये असत होने की वजह से क्या हो रहा है, पूर्व दुख दुखम, इस असत्य को जगत को सत्य मानने की वजह से लोग क्या भोग रहे हैं, केवल दुख ही भोग रहे हैं। ये दो जगत का दो लक्षण हैं, ये लक्षणों को जानने नहीं जानने के वजह से पूर्व दुख दुखम, पूर्व मतलब बार बार दुखों को भोग रहे हैं। और दूसरा ज्ञान क्या है, त्वय्येव, आप तीसरे लाइन में जो है अभी तक मैंने जो बताया आपके बारे में जो बताया वो क्या है, त्वय्येव, आप ही नित्य सुख बोध, नित्य मतलब सत शाश्वत, सुख मतलब आनंद, बोध मतलब ज्ञान, यानी सच्चित आनंद स्वरूप के आप। सच्चित और आनंद को ब्रह्मा जी ने नित्य सुख बोध कहा, अंतर यही है। तन्वा, आपका जो शरीर है ये तीन चीज़ों से बना हुआ है, और अनंत है, आप अनंत हो, और आपकी ही माया के द्वारा मायता उद्यत अपि यत सद इवा भाति। कभी कभी ये व्यक्ति कह सकता है कि ये भौतिक जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो सब जीवों को ऐसा लग रहा है कि सद लग रहा है, भौतिक जगत शाश्वत है। दो प्रकार का माया है, एक है दो प्रकार का ब्रह्म है, सॉरी माया, माया से ब्रह्म उत्पन्न होता है, दो प्रकार का ब्रह्म है, एक है आनंद ब्रह्म, दूसरा है वैकुंठ ब्रह्म। ये दो प्रकार का ब्रह्म वेदांत में, वेदांत सूत्र में वर्णन हुआ है इस जगत के बारे में। सभी जीवों का दो ही प्रकार का ब्रह्म है, बाकी जितने भी ब्रह्म हैं वो इससे उत्पन्न होता है। एक है आनंद ब्रह्म, वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, आनंद में हूँ। दूसरा है ये आनंद जो है शाश्वत रहेगा, वैकुंठ मतलब कोई कुंठ के बिना, कोई दुख, कोई रुकावट के बिना ये आनंद रहेगा, तो शाश्वत रहेगा, मैं शाश्वत हूँ, ये सब कुछ शाश्वत है, ये परमानेंट हाउस मिल गया मुझे और परमानेंट जॉब मिल गया, ऐसा सोचना, ये वैकुंठ ब्रह्म। दो प्रकार के ब्रह्म हैं, और जितने भी ब्रह्म हैं ये दो चीज़ों से उत्पन्न हुआ है, ये वेदांत का वर्णन है ये जगत के बारे में, जगत से मोहित लोग। अभी ब्रह्मा जी लास्ट में ऐसा एक तीर छोड़ते हैं, ये दो प्रकार का ब्रह्म क्यों है, वो क्यों हैं, खास करके उधर सदिवा भाति, ये सद मतलब वैकुंठ ब्रह्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि क्यों है, मायायता उद्यत्यपि, आपकी माया से उत्पन्न हुआ है ना जगत, इसीलिए ये सभी लोग ये भौतिक जगत को ही शाश्वत, ये भौतिक जगत में ही आनंद है ऐसा मान के चल रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये जो ब्रह्म है लोगों का, ये आपकी वजह से ही है, अगर आपका नहीं होता तो आराम से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। ये आपका जो माया, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया है, तो ब्रह्मा जी बहुत सुष्ट रूप में बहुत सुंदर तरीके से ये सार प्रस्तुत किया, जो आज जो हमने चर्चा किया। 18वां श्लोक तो इंडिपेंडेंट श्लोक है, 19, 20, 21 श्लोकों का जो सार है 22वां श्लोक में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि आपका शरीर दिव्य है और भौतिक शरीर जो एग्जैक्टली विपरीत है, ये भौतिक जगत को आप जैसा मान के चलते हैं, क्यों, ये आपकी माया की वजह से ही है, ये बात को इधर स्पष्ट रूप में ब्रह्मा जी कहते हैं। अब देखते हैं कल कितना श्लोक हो पाएगा 40 है टोटल कैसे भी करके हमने आया, लेकिन पहले का जो चर्चा किया हमने 17 तक, वो अति महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो सिद्धांत है जो आप जानते ही है, फिर से रिपीट किया जा रहा है, लेकिन जो ब्रह्मा जी के संबंध में जो है वो पहले 17 श्लोक तक हो गया, 17 तक हो गया, उसको हम अच्छी तरह से किया, बाद में थोड़ा सा अनुवाद मात्र कर रहे, लेकिन वो केवल ब्रह्मा जी सिद्धांत ही बता रहे, ऑलरेडी आप जानते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा पॉलिश तरीके से समझेंगे बस, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।